ओम शांति आज 16 फरवरी 2025 आज की अगस्त मुरली जो बाबा ने 2 फरवरी 2004 को चलाई थी आज हम उसे रिवाइज करेंगे मंथन करेंगे। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे 6 बजे शाम को 4 बजे 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। चारों टाइम में से जिस भी टाइम आप मुरली में जुड़ना चाहें उसके लिए एक ही लिंक, रोजाना के लिए एक ही लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जिससे आप जुड़ सकते हैं, साथी व सहयोगी बन सकते हैं। और यदि आप जुड़ नहीं पाते हैं या जुड़ना चाहते हैं परंतु आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके पास हम सब के लिए कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का विषय है पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे विश्व की हर आत्मा की पालना करो। कैसे रहना है आपको? पूर्वज। पूर्वज किसे कहते हैं कौन बताएगा? पूर्वज किसे कहते हैं?
जो शुरू से आने वाली आत्मा है,
आदि, आदि में आने वाली आत्माएं इस संसार में शरीर धारण करती हैं, तब उन्हें पूर्वज कहा जाता है। पूर्व में जन्म लेने वाली पूर्वज, जो सबसे पहले जन्म लेने वाली आत्मा, वो है पूर्वज।
भाई इस समय कहेंगे ना हम पूर्वज।
हाँ
हाँ, इस समय कहेंगे हम पूर्वज हैं।
हम हमेशा कहेंगे कि हम पूर्वज हैं। जानते नहीं वो एक अलग बात है। जो कल्प के आदि में आ गया, जैसे आपके पिताजी, आपके दादाजी आपके पूर्वज हैं, आपके परदादा जी, आपके उनके दादा वो सारे पूर्वज हैं ना।
हाँ, पूर्वज।
ठीक है, तो जो सबसे पहले आए वो पूर्वज हैं, जो उसके बाद आए। तो जो हमारे से पहले जन्म लिए और पहले जन्म, सबसे पहले जन्म लेने वाले हर कल्प में वही आदि आत्माएं हैं जो हर कल्प सतयुग में पहले आकर जन्म लेते हैं। परंतु हमें ये स्मृति नहीं रहता ना, ये ड्रामा ही हम भूल जाते हैं तो हमें ये बात पता नहीं होती। पता होती तो हम कह सकते थे। तो हम पूर्वज आत्माएं हैं, हमें परमात्मा ने आके समझाया बच्चे आप पूर्वज आत्माएं हैं। कहां बैठे हैं हम पूर्वज आत्माएं? संगम पर भी हमें चित्रों में कहां पर बैठे हैं? झाड़ के चित्र में सबसे नीचे बैठे हैं, जहां कलयुग और सतयुग का संगम है। और वहां से भी बैठे, वहां संगम पर तो सभी बैठेंगे परंतु उनमें से जो सबसे पहले पवित्र बन के जाएंगे, जो यहीं पर सतयुग में जन्म लेके जाएंगे, संगम पर जन्म लेके सतयुग में जाएंगे, वो सबसे पहली पूर्वज आत्माएं। क्योंकि मुरली हम सबको बता रही है परंतु हमारे से भी पूर्वज वो हैं जिन्होंने सतयुग में जन्म ले लिया, संगम पर ही सतयुग के लिए जन्म ले लिया। और पूज्य, हम ही पूज्य देवता थे भाई, पूर्वज भी हम हैं और सबसे श्रेष्ठ देवता भी हम बने और द्वापर में हमारी ही पूजा शुरू हुई सबसे पहले। ये नशा, ये स्वमान कि वो हम आत्माएं हैं, ये स्वमान में रहे विश्व की हर आत्मा की पालना, विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो और दुआएं लो। पूर्वज बड़ा और बड़ा का हवन सहज नहीं होता, बड़े को ही सारी बात कही जाती है, तुम तो बड़े हो वो छोटे है ना, तुम तो बड़े हो वो गलती कर सकते हैं, तुम कैसे गलती कर सकते हो, तुम तो बड़े हो भाई, बड़े की तो मुसीबत होती है ना, जिम्मेवारी होती है ना, तो आप तो पूर्वज हो भाई, आपने सब सारी आत्माओं की पालना करनी है। मक्खन लगाने में बाबा बहुत तेज, पता नहीं कौन से कहां से इतना सारा मक्खन लेके आता है, एकदम चढ़ा देता है ऊपर। अगस्त मुरली के अंदर तो ये बाबा की विशेषता है, और ये हमें सिखा रहे हैं कि आपके पास भी जो आए बस आते ही उसको ऊपर चढ़ा दो, फिर वो सिर्फ आपकी बात सुनेगा। यदि आपने उसका क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, आपने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, तो वो आपकी बात सुनने वाला नहीं। दुआएं दो, दुआएं लो, दुआएं दो और दुआएं लो, ये काम हमें करना है। कितनी सहजता से, कितनी सरलता से एकदम हमारे को आते ही एकदम चने के झाड़ पर बिठा दिया। अब आप बाबा के देव तक पर बैठो तो ठीक, नहीं तो गिरना चाहो तो भी ठीक, बाबा को कोई फर्क नहीं। बाबा ने अपना काम करना था कर, अब किधर जाना चाहते हो ये हमारा ही पार्ट।
भाई पूर्वज बोलो तो एक तो आठ ही आएंगे ना,
ठीक है, सबसे पहले पूर्वज में तो आठ ही आएंगे, सेकंड नंबर वाले पूर्वज में 100 और जुड़ जाएंगे, सेकंड वाले पूर्वज में 16,000 जुड़ जाएंगे, उसके आगे वाले में 9,00,000 जुड़ जाएंगे, वो तो सारे पूर्वज हैं। चाहे आप 9,00,000 में तो भी पूर्वज हैं, 108 में तो भी पूर्वज हैं, 16,000 में तो भी पूर्वज हैं, यदि आप 2 करोड़ में भी आते हो तो भी पूर्वज हो, क्योंकि आगे आने वालों के लिए तो आप पूर्वज हो ही। द्वापुर में आने वालों के लिए तो 33 करोड़ में भी आपका नाम आता है तो भी आप पूर्वज हो।
जो 84 चक्र में आता है वो पूर्वज
है। भाई बात सारी ये है ना कि मैं यही आप हमारे भाई साहब का जो था कि अभी हम कह सकते हैं, मतलब अब भाई साहब जो है ना इस उम्र में है कि उनको पूर्वज कहेंगे ना, ये तो नहीं कि मर जाने वालों को पूर्वज कहा जाता है। जो अब दादा बन गया, पर दादा बन गया, वो पूर्वज की लाइन में आ गया, सीनियर हो गया, फिर परंतु उससे भी पूर्वज है ना, उससे भी पूर्वज है ना, और फिर ये तो हम देह के हिसाब से पूर्वज हैं, दुनिया में तो देह के हिसाब से पूर्वज होते हैं, परंतु चाहे कोई आत्मा अब जन्म ले रही है, परंतु वो आयु सतयुग के आदि में थी, उसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, वो सबसे पहले पूर्वज है ना। जो कृष्ण के साथ जन्म लेने वाली आत्माएं हैं 8 या 108, वो तो हमेशा के लिए पूर्वज है, परंतु वो अपने साथियों के पूर्वज नहीं होते। अपने साथियों में सबसे पहले आने वाला कृष्ण है, कृष्ण की आत्मा सबसे टॉप नंबर 1। उसी प्रकार से ही आईडी प्रूफ मिला है, उसी हिसाब से आईडी प्रूफ मिला है। मैं समझता हूं ये पॉइंट हमारा क्लियर होगा कि हम पूर्वज आत्माएं हैं और पूर्वज की ड्यूटी है पूज्य के पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहकर हम दुआएं दें और दुआएं लें। बस हमें किसी,
हाँ जी,
अभी तो हमसे और बाद में आने वाली बहुत सारी आत्माएं हैं।
हाँ बिल्कुल, उनके तो हम पूर्वज है ना,
उनके पूर्वज,
उनको तो पालना करने वाले ना, वो तो हमारे हमारे से बाद में आएंगे। सोचो कि अभी यदि हमारी अभी जनसंख्या आ जाएगी, अभी जब मीटिंग होगी अप्रैल में, क्योंकि अभी सभी सेंटर से संख्या जा रही है, तो हमारी अप्रैल की मीटिंग में जनसंख्या आ जाएगी, कितने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बन गई हैं, क्योंकि 20 तारीख को डेट दे दी है कि 20 तारीख तक आप अपने अपने सेंटर की संख्या भेज दो 20 फरवरी। उसके बाद हम अप्रैल में जाएंगे तो टोटल जनसंख्या आ जाएगी कि इतने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां सेंटर से कनेक्टेड या इतने संबंध संपर्क।
हमारे तो रिकॉर्ड नहीं है ना उधर, अब
क्यों नहीं है? अच्छा मतलब आप सेंटर से कनेक्टेड नहीं है?
अभी नहीं।
हाँ ठीक है, मतलब ऐसा वो तो बात इतने संबंध संपर्क में लिखते है ना, दूसरा उसमें कंडीशन ये भी साथ में है ना कि आपकी संख्या जितनी होगी हम उतनी परमिशन देंगे। यहाँ भी भ्रष्टाचार को तो फिर आपने क्वेश्चन पूछा है तो भ्रष्टाचार तो होगा। भ्रष्टाचार क्या होगा कि बहनों को संख्या ज्यादा चाहिए तो कोई फर्जी भी संख्या दिखा सकती है, सच दिखाते हैं तो उनका पार्ट है, बहुत अच्छी बात है।
नहीं इन भाइयों को भाई जी फिर आप अपने इसमें तो ले सकते हो जो सेंटर से नहीं है।
मेरा कोई सेंटर नहीं है,
ऐसा कोई सेंटर नहीं
मैं सिर्फ ज्ञान सुनाने वाला हूँ, है नहीं? बल मेरे सेंटर तो शिवाजी नगर में जहाँ पर, या मदनपुरी में, या देवीलाल नगर में जहाँ मैं क्लास कराता हूँ, वह संख्या मैंने दे दी। जहाँ जहाँ
सेंटर तो चार सेक्टर में जुड़ेगा भाई जी।
हाँ मैं वही,
पाठशाला
हम पाठशाला है ना, तो जितनी पाठशालाओं को मैं देख रहा हूँ, जहाँ की बंदारियां मैं खोल के आता हूँ, उनकी जनसंख्या देना मेरा काम है, चाहे वो रजिंद्रा पार्क हो, सेक्टर 5 हो, तिकोना पार्क हो, लक्ष्मी गार्डन, जो ब्रांचेस हैं जिनकी भंडारी मैं खोलता हूँ, तो उसकी जनसंख्या तो मैं बताऊंगा, बाकी जनसंख्या तो बहन जी बताएगी। तो बात सारी यहाँ थी कि वहां पर कौन कितना क्या बताता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी मैं जो अभी मैंने बहन जी को बताया कि बहन जी ऊपर से आया है कि आप संख्या अपनी अपडेट कर दो, 20 तारीख के बाद हम आपके अपडेशन नहीं करने देंगे, और फिर इसी के साथ से ही आपको बाबा मिलन या प्रोग्राम में माउंट आबू आने के लिए उसी हिसाब से आपको संख्या मिलेगी। मतलब देख लेंगे ना, अभी इस सेंटर पर इतने भाई बहन है, अब वहां पर आपके पास क्लास में आते हो 50 जने और आप बोल रहे हमें 60 जनों की परमिशन दे दो, कहाँ से आगे 10 जने जी आपके पास? हाँ जी हाँ, संख्या भेज टोटल संख्या, आपके सेंटर पर कितने माताएं, कितने भाई, कितने बच्चे, कितनी कुमारियां आती हैं। अब ये है कि जो जो जैसा भी है, मतलब उसका तो वही जाएगा ना, डाटा तो जाएगा, उसी डाटा को ऑटोमेटिक कंप्यूटर काउंट करके दे देगा, जैसे ही पहुंचेगा कंप्यूटर और सीधा बता देगा हाँ जी इतनी माताएं हैं, इतने भाई, इतनी बहनें, और वो और जो मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में वो डाटा दे सकेंगे कि भैया इतनी संख्या हमारे बाबा के बच्चों की। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं, हर एक बच्चा पूर्वज भी है, हर एक बच्चा, कितनी लाइन क्लियर किए बाबा ने, हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है, इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं। कहां बैठे हम? जड़ में, तना भी हो, क्योंकि जो जड़ में है वही तने में आएंगे, जो जड़ में नहीं है वो तने में क्यों आएंगे? तना का मतलब क्या है? तने का मतलब है सतयुग भी त्रेता भी, ये कहां आ गया? तना में आ गया, ठीक है। और कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से है, जड़ का और तने का, सारी टाल टालियों से, मतलब जो भी शाखाएं हैं उन शाखाओं तक खुराक जाने का आधार क्या है? तना। ये जड़ों में से जो खुराक जाएगी, जड़ों से लेकर तने तक ब्रांचेस जब बनेगी तो उनकी ब्रांचेस बनेगी ना, हर ब्रांच को भी कहां से भोजन जाएगा? हर पत्ते तक, हर टाल तक, हर डाल तक, कनेक्शन किसके?
जड़
से कनेक्शन होगा ना, तो जड़ में बैठे हैं जो आत्माएं, जो तने में आ गई हैं आत्माएं, वो सबको खुराक देने के सहयोगी बनेंगे ना, तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, दादाओं का दादा, परदादा, सरदादा और उससे भी ज्यादा दादा, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। अकेला ब्रह्मा बाबा नहीं है, आप भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, क्योंकि आप 10 को ज्ञान सुनाएंगे, 10 सौ को सुनाएंगे, 100,000 को सुनाएंगे, तो आप क्या बन जाएंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर बन जाएंगे ना। पूर्वज आत्माओं का कितना स्वमान है, उसे नशे, उस नशे में रहते हो, सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में कौन हो? उस टहनी को कौन पकड़ के खड़ा होता है? तने, तने वाले जो तने में आ गए, जो 33 करोड़ में आ गए, वो सारी ब्रांचेस को संभालने का काम तो उनका है ना। आधार मूर्त पूर्वज के साथ दूसरा नाम क्या दिया? आधार मूर्त पूर्वज, पूर्वज हो, इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। तुम पूर्वज हो तो तुम पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को साकाश स्वतः ही मिलती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा लाख पत्ते को भी साकाश मिलती है। वहां के जड़ से खुराक जाती है और आप क्या देते हो? साकाश देते। पूर्वज का कार्य क्या होता है? दादा परदादा का क्या कार्य होता है? पूर्वज का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही, चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, चाहे स्थूल भोजन द्वारा या पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है, तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना है। तो दादा दादी का काम क्या होता है? पाल पोते पोते को संभालो, उनको देखो, उनके कोई परेशानी है तो उनकी समस्याओं का समाधान करो, मरने तक आपकी ड्यूटी यही है, देखभाल करना।
इसी ड्यूटी के लिए आए हुए हैं भाई
जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आत्माओं की पालना करना। तो यहां पर लौकिक में आप जब करते हैं तो वो आपने अलौकिक में भी करना है ना। सारे विश्व की आत्माओं को आपको क्या देनी है? साकाश देना, पालना करनी है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है, तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर, अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है, ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो, स्वयं को निमित्त समझते हो, सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है। ये स्मृति रहती है, सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके साकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो, विश्व की सेवा याद आती है, वह अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है, हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियां व देवताओं को पुकार रहे हैं। आओ क्षमा करो, कृपा करो, तो भक्तों की आवाज सुनने आता है, आता है सुनने या नहीं, कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है कि ये भी हम पूर्वज की ही टाल टालियां हैं। इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है। जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है। जानते हो ना, इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको ये हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों का को भी अपनेपन का आभास होता है। क्योंकि जब आपके दिल में होगा कि ये अपने हैं तो उनको भी लगेगा कि ये अपने हैं। दृष्टि से मिलनता है ना, जब आप देखोगे कि ये अपने हैं तो वो भी देखेंगे कि हाँ, अपनापन आपका उनके प्रति दिखाई देगा। कैसे दिखाई देता है ये अपने हैं? जब वो कुछ देता है। दादू नानू कब होते हैं? आप बच्चे को कुछ देते हो तो दादू नानू, आप उसे कुछ देते नहीं हो तो क्या के दादू और क्या के नानू, क्या के मामा। जो देता है वही ही प्यारा लगता है, नहीं देता है तो नहीं। चाहे वो स्थूल प्यार दे, चाहे सूक्ष्म प्यार दे, चाहे उनको जैसे भी दे, तो आप भी जिसको प्यार देंगे उन्हीं को आप अपने लगोगे। आप जिनको प्यार नहीं दोगे, और प्यार हमारा प्यार कैसे पता लगेगा कि हम प्यार करते हैं उनको? कैसे पता लगेगा कि हम उनको प्यार करते हैं? जब हम उनको बाबा से मिलाएंगे, उनके जीवन में खुशी देंगे, उनको ज्ञान रत्नों से माला माल करेंगे, तब तो उनको अपने लगेंगे। यदि हम उनको ज्ञान रत्नों से माला माल नहीं कर रहे हैं तो कैसे लगेंगे कि ये अपने? क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो, सबके। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि ये हमारे ही हैं, पूर्वज व इष्ट है। फिर से हम मिल गए, फिर पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्म आत्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो कितना है, विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, यशो गान करते हैं। कीर्तन करने का मतलब क्या होता है? कीर्तन का मतलब होता है कीर्ति का वर्णन करना, उनके यश का, उनके गुणों का, उनकी विशेषताओं का। कीर्तन होता क्या है? देवी देवताओं के गुण गाते हैं ना, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। चाहे भल वो झूठ बोलते हैं, उनको विचारों को पता नहीं, पर तो अपनी तरफ से वो गुणगान ही कर रहे होते हैं। और आरती का मतलब क्या होता है? आरती का मतलब क्या होता है? सारी दुनिया आरती करती रहती है, आर्त की पुकार। आरती किसे कहा जाता है? आर्त की पुकार। आरती में सारे भिखारी बन के मांग रहे होते, दुखिया है सारे, वो पुकार रहे हैं प्रभु क्या करो। आरती में क्या देखा है? विषय विकार मिटाओ पाप हरो। आरती ना बेचारे दुखी है ना भगवान। सारी आरती के अंदर देखो तो यही समझाया गया है, भगवान हमारे को इन दुखों से क्या करो, दूर करो। या भगवान आप ही हमारे दुखों को दूर करने वाले हो, आओ। आपने अंधों को आंखें दी, गोड़न को क्या दिया, शरीर दिया, लंगड़े को ये दिया, फलाने को ये दिया, फलाने को ये दिया, अब मेरे को भी दे दो कुछ ना कुछ तो, मैं भी तो आपकी आरती कर रहा हूँ, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सुन रहे हो ना प्रभु मेरी बात, रोज सुनाते हैं सवेरे भी शाम को भी, फिर उसकी तरफ मुंह नहीं देखते सारा दिन, फिर दोबारा मुंह देखने नहीं जाते शाम सुना देते वो भी कोई तो एक बार सुना देते, कोई कहते देता दादा तो ऐसा ही नहीं, क्या सुनाने जाए, देना होगा दे देगा, नहीं देना होगा तो नहीं।
भाई कीर्ति माने वो ना बधाई करना।
हाँ कीर्ति, कीर्ति माना यश, गुणगान करना। कीर्तन का मतलब है गुणों का, उनका कीर्ति का, उनके जो विशेष गुण है विशेषता है उनको गाना। और आरती का मतलब है आर्त की पुकार, जो दुखी है वो पुकार रहा है, इसका मतलब होता है। हाँ वो आरती बोलने वालों को नहीं पता कि आरती का मतलब क्या है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो, तो अपने को ऐसे समझते हो, ऐसा नशा है नशा जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं, ये नशा रहता है, ये स्मृति रहती है, वे हाथ उठा रहती है, रहती है ना वो हाथ, तो वे तो हाथ उठाया रहती है, वे तो हाथ उठाया, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है, दूसरा क्वेश्चन खुद गुजरे बाबा कहते बताओ, मतलब अब आप आपकी देना ऐसा रहता है कि जो हम पूर्वज आत्मा है इस प्रकार से आप सबको देखते हो ना, चलो अब देना दूसरा क्वेश्चन क्या होगा मेरा, हमारे एक्सपर्ट ने देख रहे हैं कि आप मेरे क्वेश्चन को समझ सकते हो नहीं। सदा रहता है कि मैं पूर्वज आत्मा हूं, ये आपकी बुद्धि में सारा रहता है कि मैं इन सबका दादा हूं, सारी दुनिया ब्रह्मा बाबा को ये नशा रहता था, ये जो ना सब जो हमारे दादियां हैं दीदियां हैं उनसे हमने जो सुना वो ये कि ब्रह्मा बाबा को ये नशा रहता था कि मैं आधार मूर्त आत्मा, जो भी आता था इतने देर से खुले देर से बाबा सब बच्चों को मिलते थे, आओ बच्चे आओ, पहली बार आ रहा है, परंतु तो उसे ऐसे लगता था जैसे मैं कल्प कल्प का बिछड़ा हुआ हूं और मुझे आज वो बाबा मिले, गले लगा लेना, ये वंडरफुल, इतना बड़ा दिल के मेरे बच्चे मेरे पास आए हैं, बिछड़े हुए बच्चे मेरे पास आए, मतलब ये नशा ब्रह्मा बाबा को रहता था। कोई बाल पागल भी समझ सकता है परंतु बाबा को ये नशा रहता था, और वो नशा बाबा कह रहे हैं आपको होना चाहिए, वो नशा बाबा कह रहे हैं आपको होना चाहिए, और वो भी सदा, ये नहीं प्रोग्राम के टाइम पर तो वाह वाह आप बड़े दिल से सबका स्वागत कर रहे हैं, बट तो उसके बाद तू कौन और मैं, बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखने चाहते हैं, हर प्राप्ति में अविनाशी, क्योंकि कोई भी बच्चे तक बाबा का जो ज्ञान है ना पहुंचे ऐसा नहीं हो, कभी कभी नहीं, कभी कभी नहीं कि कभी सेवा की सवेरे उठ करके सकाज दे दिया उसके बाद सारा दिन 24 घंटे आप दादा हो भाई, आप पूर्वज हो भाई, आपने बच्चों को 24 घंटे उन्हीं के बारे में सोचना है, उन्हीं का कल्याण करना है। जवाब बहुत चतुराई से देते हैं, क्या कहते हैं, रहते तो हैं अच्छा रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है, देखो बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी क्या हो, अविनाशी हो ना, प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान भी अविनाशी बाप द्वारा, और ज्ञान भी अविनाशी, तो भी क्या धारणा भी क्या होनी चाहिए, ज्ञान भी अविनाशी, देने वाला भी अविनाशी, लेने वाले भी अविनाशी। अब ये बताओ कि धारणा कौन सी होनी चाहिए, विनाशी या अविनाशी? वो भी अविनाशी होनी चाहिए ना, या कभी कभी वाली होनी चाहिए? बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सरकमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखने चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो, लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीन सेवा इकट्ठी हो, सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो, सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज्यादा है, मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज ज्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज्यादा हो, सेवा में सफलता और ज्यादा हो। बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए हैं, ये देख बाप दादा को भी खुशी होती, नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते, नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहते हैं। क्यों क्यों देखना चाहते हैं? जब आप निमित्त बने हो हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। इसके लिए विशेष दो बातों पर अंडरलाइन करो, करते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो कि ये आत्मा मेरा भाई है, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो, चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना, उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो, जैसे शुरू शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है, इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया। आत्मा खत्म नहीं हुआ है लेकिन मर्ज हो गया। आत्मिक समान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो, वही कल्प पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो मुझ देव आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है। दुआएं देना और दुआएं लेना, दुआएं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ क्षेत्र क्या सेवा करते हैं, कैसी भी आत्मा हो लेकिन दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते, और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि वृत्ति बोध भावना सबसे दुआएं दो, दुआएं लो, दुआएं दो और दुआएं लो। आपका टाइटल है वरदान ही है, टाइटल है वरदान ही है महादानी। सेवा करते कार्य में संबंध संपर्क में आते सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं दो। कैसे दिया जाता है दुआएं देना लेना, और हमने उनका कल्याण करना, जिसमें कल्याण हो वही उनसे बात करनी, वही उनको देना है जिसमें उनका कल्याण है। और कल्याण सिर्फ एक परमात्मा की डायरेक्शन पर चलने में, तो हमने परमात्मा डायरेक्शन के लिए उनके साथ बात करनी है, उनको समझाना है, उनको परमात्मा डायरेक्शन पर चलने के लिए अपने अनुभवों से, अपने अनुभवों से संपन्न बनाना। ये मुश्किल है क्या? जो आपने कर लिया वही तो आपने उनको बताना है कि सहज है, जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ। कोई आपका ओपोजिशन करे, विरोध करे, तो भी दुआएं देंगे, देंगे। इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास, ऑपोजिशन तो होगी, क्योंकि ऑपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। जब तक ऑपोजिशन ना हो तब तक आप ऊंची पोजीशन में कैसे पहुंचेंगे? आप ऑपोजिशन पर विजय प्राप्त करेंगे तब तो ऊपर जाएंगे ना। क्या बाबा ढूंढ के लाता है? ऑपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती
है।
हाँ जी,
इसे ऑपोजिशन तक पहुंचाने से स्पष्ट करें थोड़ा सा।
ऑपोजिशन ठीक है, ऑपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। अब जब तक हमारे सामने ऑपोजिशन, समझो कि एक हर्डल है, एक रुकावट है, अपोज करने वाला हमें लगता है हमारा दुश्मन है, मैं आगे बढ़ रहा हूं ये मुझे बढ़ने नहीं दे रहा है, मेरा पेपर है वो हमारे सामने। क्या हमारे सामने जो पेपर आता है वो क्या होता है? हमारे सामने समस्याएं खड़ी की जाती हैं, ये बताओ ये समस्या आ गई है तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आया तो क्या उत्तर देंगे। ये जो प्रश्न है, ये सारे के सारे प्रश्न, ये सारी की सारी समस्याएं, सारी की सारी मुसीबतें ना आए और हम मुसीबतों पर विघ्नों पर विजय प्राप्त ना करें तो हम विघ्न विनाशक कैसे हैं? जब हम उनको पास करेंगे तो हमारी पोजीशन बनेगी। जितना हम ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे आएंगे उतना हमारी पोजीशन ऊंची होगी।
भाई
हाँ जी,
वृत्ति कल भी आया था और आज भी आया, वृत्ति मीन्स क्या है बताओ?
वृत्ति जो होता है हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो आदतें हैं, हमारी वृत्ति उसी प्रकार की होती है। जैसे किसी की आदत है कि वो सबको प्यार करता है, उसके संस्कार बने, उसकी आदत बनी हुई है कि मैंने सबको प्यार करना है। अब कोई किसी को देख करके जलता रहता है तो ये उसकी वृत्ति बनी हुई है कि वो जलेगा, वो देखते ही जलेगा, आग लग जाएगी उसको कि इनके घर में गाड़ी कैसे आ गई, एक गाड़ी आई थी दूसरी गाड़ी कैसे आ गई, वो जलेगा।
ये तो प्रभाव बहुत कॉमन है आजकल परिवारों में।
हाँ बिल्कुल कम, मतलब इसी को वृत्ति कहते हैं। वो उसकी जो जलन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई देगी, और किसी के अंदर प्यार है तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई देगा, बोलेगा तो उसे बोलने से पता लगेगा कि हाँ ये दिल से प्यार करते
हैं। जो जलन रखते हैं उनका समाधान क्या है? ये तो ईर्ष्या करने से रुकने वाले नहीं है।
नहीं, वो उनका पार्ट है, मतलब हमने ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि वृत्ति क्या होता है। क्वेश्चन ये है कि वृत्ति क्या होता है? अब जो प्यार करता है, सबसे प्यार करता है, वो सबको बड़े प्यार से मिलेगा, और जो नहीं करता है वो नहीं मिलेगा। उसके देखने से, उसके बोलने से आपको पता लग जाएगा कि ये कैसा है, उसका दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि उसके उसने जो अपने आप को समझा के रखा हुआ, मेरा किसी से कोई मोहब्बत नहीं, मेरा किसी से प्यार नहीं, मैं किसी को क्यों देखूं, मेरा क्या मतलब, मेरा क्या मतलब, वो उसको देखेगा नहीं। जब उसको कईयों को कंसर्न होता है, वो हर एक के लिए भला करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, तो उसका दृष्टिकोण है, वो उसकी वृत्ति है, क्योंकि उसके संस्कार में है कि मैंने सबका भला करना है, मैंने सबको सहयोग देना है। वो हर टाइम अलर्ट रहेगा, एक्टिव रहेगा, सबको सहयोग देने के लिए तैयार रहेगा। देखो सबसे ज्यादा ओपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई है, और ओपोजिशन किसने पाई? ब्रह्मा बाबा ने पाई नंबर वन। यदि उसका ओपोजिशन ना होता, उसके खिलाफ इतना ड्रामा ना होता, तो उसकी पोजिशन इतनी ऊंची थोड़ा जाती। ब्रह्मा ने पाई ना, कुछ भी हो लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं लेना है, देनी है, लेनी नहीं है, देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने वाले, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी, बच्चा है बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यही वृत्ति रखो। ये कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे बदल, इसको भी बदलना है, ये बदले तो मैं बदलू नहीं, मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है। तब हुआ, तब दुआ निकलेगी। और दुआएं मिलेंगी अभी तो सब, अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक शेष आत्माएं स्वयं परिवर्तक द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मुहूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मुहूर्त, उद्धार मुहूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ तीन बातों का स्वयं में संकल्प मात्र भी ना हो, ये परिवर्तन करो। एक पर चिंतन और दूसरा पर दर्शन, स्वदर्शन की बजाय पर दर्शन नहीं, तीसरा पर मत या पर संग, दूसरे का संग, कुसंग, गंदी संगत नहीं लेंगे। श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने समझाया है, पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक पर उपकार बनो, पर उपकारी बनो, दूसरों का भला करने वाले बनो। ये तीन पर काट, तीन पर काट दो। कौन से तीन पर काटने? पर माना पंख, तीन पर काट दो। कौन से पर काटने? पर दर्शन, हमने दूसरे को नहीं देखना, पर चिंतन, हमने दूसरे के बारे में चिंतन नहीं करना, पर मत कुसंग, हमने किसी भी गलत व्यक्ति को ना देखना है, प्रदर्शन मतलब गंदे व्यक्ति को देखना, पर चिंतन मतलब गंदे व्यक्ति का चिंतन करना, क्योंकि देहधारी सब गंदे हैं, देह विमान में है, उनका चिंतन भी नहीं करना, उनका दर्शन भी नहीं करना, उनकी मत पर भी नहीं करना। पर का मतलब बताया बाबा ने, फालतू संग, फालतू लोगों के साथ नहीं रहना जो काम के नहीं है, पर उपकारी बनो। परंतु हमने सब फालतू लोगों का भी क्या करना है? उपकार करना है, तभी तो दुआएं मिलेंगी। और दुआएं देंगे, कोई कुछ भी दे, लेकिन आप क्या दो? आप दुआएं, इतनी हिम्मत है पूछ रहे हैं हिम्मत? तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर्स वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे, लेकिन हम दुआएं देनी, हमें क्या देनी है? सबको दुआएं देनी है। तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत देंगे, क्या देंगे? हिम्मत के उमंग के कारण मदद देंगे, ऐसा मदद देंगे, लेकिन दुआएं देंगे तो ये याद रखना, बिना दुआएं दिए नहीं मिलेगी, मिस नहीं करना। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना, जैसे ऊपर बहुत सारे क्लर्क रखे हुए हैं, हर एक का डाटा वहां पर लिखते जा रहे हैं, संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ ना हो। हिम्मत है तो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। करेंगे मधुबन वाले टीचर्स, करेंगे अच्छा मार्क्स जमा करेंगे। मुबारक। क्यों बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है? कौन आई है एडवांस पार्टी? वो कैसी है कि हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वो बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? दोनों में अंतर याद आ रहा है, एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज। हम तो तैयार बैठे हैं एडवांस स्टेज वालों को जन्म देने के लिए, भेजो। कब बनेंगे एडवांस स्टेज वाली आत्मा, कब बनेंगे हम उनको जन्म देवे? नहीं समझ में आ रही है? हाँ, एडवांस स्टेज किसको कहते हैं? एडवांस स्टेज की आत्माएं जो कृष्ण के साथ जन्म लेंगी, एडवांस पार्टी की आत्माएं जिन्होंने कृष्ण और कृष्ण के साथ वालों को जन्म देना। दोनों एडवांस पार्टी वाले। बाबा क्या कह रहे हैं? एडवांस पार्टी वाले कहते हैं, भाई हम तो बैठे हैं एडवांस पार्टी में, पहुंच गए, हमारा पार्ट पहुंच गया, अब एडवांस स्टेज वाले कब आओगे ताकि हम अपना काम करें और घर जाएं? क्या उत्तर दूं? पूछ रहे हैं से बाबा, उनको क्या उत्तर दूं एडवांस पार्टी वालों को? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्त हो। कितनी क्लियर लाइन है? एडवांस पार्टी वाले और एडवांस स्टेज वाले दोनों मिले तो काम पूरा हो। एडवांस स्टेज वालों को उन्होंने जन्म देना है तो वो पूछते हैं तो,
भाई जी,
हाँ जी,
एडवांस स्टेज की आत्मा इसी शरीर से सतयुग में आएंगी आदि में?
भाई जी, एडवांस स्टेज की आत्माएं माना कृष्ण के साथ अभी शरीर छोड़कर उनके पास जन्म लेंगी। एडवांस पार्टी की आत्माओं का शरीर पतित माता पिता के द्वारा बना है, परंतु एडवांस स्टेज वाली आत्मा एडवांस पार्टी की पवित्र आत्माओं के द्वारा बनेगा, उनको निर्विकारी जन्म मिलेगा। तो जिनका निर्विकारी जन्म मिलेगा उनका शरीर सुरक्षित रहेगा, जिनका विकार में जाने के बाद या आने के बाद विकारी बन गए या विकारी माता पिताओं से जन्म लिया, उनका शरीर नष्ट। हाँ जी, जो एडवांस स्टेज वाली आत्माएं हैं जो पवित्रता से जन्म लेंगे और उनके शरीर क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। हमने विकार से जन्म लिया है, हमारे ये शरीर नष्ट हो जाएंगे। हाँ जी,
निर्विकारी कैसे जन्म होंगे?
उनके माता पिता बिना विकार में गए जन्म देंगे। जो एडवांस पार्टी में गए हैं वो विकार में गए बिना जन्म के। ये एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज का मिलन क्या करेंगे? एडवांस स्टेज वाली आत्माएं एडवांस पार्टी को कैसे मिलेंगी? वो उनके पास जन्म लेंगी। अब दादियां हैं, इन्होंने शरीर छोड़ा तो उनके पास जाकर जन्म लिया ना। जो एडवांस पार्टी में गए हुए हैं उन्होंने बिना विकार में गए उन बच्चों को जन्म देने वाला कार्यक्रम किया, गर्भधारण हुआ। तो वो पूछते हैं तो क्या जवाब दें? बाबा पूछ रहे हैं, बताओ, पूछ रहे हैं एडवांस पार्टी वाले, एडवांस स्टेज वाले कब आओगे, कितने साल में बनेंगे आप एडवांस स्टेज वाली आत्माएं? भाई माइक बंद कर दे जिसका माइक खुला है। सब मना लिया, सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन जुबली भी मना ली, डायमंड जुबली भी सब मना लिया, अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ। अब कौन सा मनाओ?
एडवांस
स्टेज की सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। ठीक है, डायमंड जुबली कब मनाई थी? जब डायमंड हॉल बना था 1996 में, और उसकी डेट फिक्स करो। उसके बाद प्लेटिनम जुबली भी मना ली। पांडव बताओ डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो, पांडव बताओ डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो डेट फिक्स करो। होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा आज की हो जाएगा। बोलो कुछ तो बोलो, सोच रहे हैं क्या? निर्वैर से पूछ रहे हैं, सेरेमनी होगी या अचानक होगा?
हो जाएगा।
आप हो जाएगा अचानक? आप दादी से पूछ रहे हो? निर्वैर भाई दादी से पूछ रहे हैं, ये दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले? आप बताओ भाई, रमेश को कहते हैं बताओ। आखिर तो ये होना ही है ना, आखिर भी कब? आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने एक साल की एक्स्ट्रा डेट दी, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, ये तो कर सकते हैं ना, ये करके दिखो।
बाबा जो बोल रहे वो सब सामने वाले समझ रहे थे ये बात?
अब ये तो वो जाने, मैं कैसे बता सकता हूँ, ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि उनको समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था। ये करके दिखाओ, ये हमारे सामने चली हुई मुरली है ना, ये तो हम आगे थे ना उस टाइम पर, ये 2002 में है, कृष्ण ने जन्म लेना है, एक साल का टाइम दिया है। ये करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस 2004 को ऐसा मना लेंगे, मतलब ये कि अभी इतनी तैयारी नहीं है तो एडवांस पार्टी को अभी एक वर्ष तो रहना पड़ेगा ना। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना, अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। अच्छा, अभी रूहानी दिल याद है, एक सेकंड में अपने पूर्व स्टेट में आए परम धाम निवासी बाप के साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। तो एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, साकाश दो, शक्तियां दो। अच्छा, चारों ओर के विश्व को के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्वयं परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाली समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। हम बच्चों के भी बाप दादा को नमस्ते। दादी जी, दादी जानकी जी से अच्छा है, दोनों दादियां बहुत अच्छी पालना कर रहे हैं, अच्छी पालना हो रही है ना, बहुत अच्छा सेवा के निमित्त बनी हुई है ना। तो आप सबको भी दादियों को देख के खुशी होती। खुशी होती है ना, जिम्मेवारी का सुख भी तो मिलता है ना। सबकी दुआएं कितनी मिलती, सभी को खुशी होती है। दोनों दादियां बाप दादा को गले लगी और जैसे ये देखकर खुशी होती है, वैसे इन्हों जैसे बन के कितनी खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया है। तो कोई विशेषता है तब तो निमित्त बनाया है, और वही विशेषताएं आप हर एक में आ जाए तो क्या हो जाएगा, अपना राज्य आ जाएगा। जो बाप दादा डेट कहते हैं ना वे आ जाएंगे। अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी है हर एक समझे मुझे, हर एक समझे मुझे करनी है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे, तो विश्व का नव निर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव ये गुणों की खान है, सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो सभी गुण सहज आ सकते, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म और तेरापन भी तेरा तेरा हो जाता है। सहज योगी बन जाते हैं तो सभी को दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न है विशेषताओं को समान बनाना। तो ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। किसी में भी कोई विशेषता देखो, विशेषता को भले फॉलो करो, आत्मा को फॉलो करो, करने में नयन दिखाई दे। विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। अच्छा, आज का वरदान है निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर वन भाग्यवान बनने वाले विजय के तिलक धारी भाव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते, उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसे ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वो जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर वन भाग्य की रेखा। तो स्लोगन, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में क्या लगा दो, बीत गया उसे फुल स्टॉप लगा दो तो आप खुश हो जाते। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने कारण एक की याद में रह सकता है, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी शक्ति वाला जो होगा वो एकांत प्रिय हो सकता है, वो एकांत प्रिय हो सकता है। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। साय 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहने समुचित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकल कर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन में
one of the videos, one of the